मेरी प्यारी छात्राओं, मैं डॉक्टर वर्चस्व सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, JKBPG कॉलेज। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लोकमत अर्थात पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहले हम लोकमत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। साधारण शब्दों में लोकमत का तात्पर्य सामान्य सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में जनता के मत से है। किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा एक देश की शासन व्यवस्था का संचालन जनता के द्वारा या तो प्रकट या मौन स्वीकृति के आधार पर ही किया जा सकता है। यह बात न केवल प्रजातंत्र वरन राजतंत्र शासनों, तानाशाही शासनों, कुलीन तंत्र शासनों या फिर विदेशी शासन के संबंध में भी पूर्ण रूप से सत्य है। इन विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत का महत्व हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले हम राजतंत्र व्यवस्था में लोकमत किस तरह राजा की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था में राजा के निरंकुश और स्वार्थी होने की सदैव आशंका रहती है। लोकमत राजा को अगर देखता है कि वह अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन से विमुख हो रहा है तो उसे चेतावनी देता है, और कोई भी बुद्धिमान राजा जनता के असंतोष की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है असंतोष का परिणाम क्रांति होगा और अंत में राजा को अपने सभी अधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा। लोकमत का महत्व न केवल राष्ट्रीय शासन की स्थिति में परन विदेशी शासन से भी होता है। विदेशी शासन सामान्यतः अपने हितों की चिंता करते हैं और ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं जिससे विदेशी शासन स्थायी हो जाए। ऐसी स्थिति में विदेशी शासन के कुप्रभाव को रोकने के लिए प्रबल लोकमत बड़ा ही आवश्यक होता है। विदेशी शासन लोकमत के भय से लोकहित कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लोकमत का महत्व राजतंत्र शासनों या फिर विदेशी शासन में बहुत होता है, किंतु लोकतंत्र का तो लोकमत प्राणी है। यदि लोकतंत्रीय सरकारें जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगती है तो वो जनता की सरकार नहीं रह जाती। ऐसे में प्रजातंत्रीय सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वह अपने आप को जनता के दृष्टिकोण के संपर्क में रखे और ऐसी नीति का अनुसरण करना होता है जिसे जनता का समर्थन जनमत द्वारा किया जाता है। प्रजातंत्र में लोकमत का महत्व अनेक रूपों में बताया जा सकता है, जैसे शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई सरकार अपनी मनमानी करने का प्रयत्न करती है तो जनमत के द्वारा शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण सरकार का पथ प्रदर्शन करती है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण करती है। जनमत स्वार्थ तथा बेईमान राजनीतिज्ञों और नेताओं पर नियंत्रण रखता है, जिससे वे सरकार को अपने मित्रों तथा संबंधियों की स्वार्थ सिद्धि का साधन न बना ले। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा जनमत के द्वारा की जाती है। जब कभी सरकार जनता की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करने लगती है तो जनमत उन्हें इस प्रकार के अनुचित कार्य करने से रोककर जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस प्रकार नितांत स्पष्ट है कि लोकमत का बहुत अधिक महत्व है। लोकमत के महत्व के संबंध में ह्यूम ने लिखा है, सभी सरकारें चाहे वे कितनी भी दूषित हों अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर रहती है। डॉक्टर आसिफ आदम के शब्दों में जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है। अब हम लोकमत का अर्थ और परिभाषा पर आते हैं। प्राय लोग लोकमत का अर्थ बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लेते हैं, जो कि गलत है। कई बार बहुमत भी गलती कर सकता है और अल्पसंख्यक के हितों की उपेक्षा कर सकता है, परंतु लोकमत उसे कहते हैं जो विवेक और स्वार्थ रहित सिद्धि के आधार पर आश्रित हो, जिसका लक्ष्य किसी जाति वर्ग विशेष का हित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का हित हो। लोकमत की परिभाषा देते हुए रूसो कहते हैं, लोकमत किसी विशेष समय या स्थान में प्रचलित प्रभावपूर्ण विचारधाराओं के आधार पर निर्मित सार्वजनिक मत है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार यदि बहुसंख्या थोड़े की भलाई को ध्यान में रखकर अर्थात संपूर्ण समाज की भलाई को सामने न रखकर कोई मत स्थिर करती है तो हम उसे जनमत नहीं कह सकते। हम उस मत को जनमत कहते हैं जो समस्त समाज की उन्नति के लिए हो। लोकमत की विशेषताएं पर हम प्रकाश डालेंगे। लोकमत की विशेषताएं इस प्रकार है, लोकमत सर्व साधारण का मत है, किसी वर्ग विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों का नहीं। यह विवेक पर आधारित स्थायी विचार है, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। इस मत में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा, वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो। अब हम लोकमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है उस पर प्रकाश डालेंगे। जब देश के सामने कोई विशेष प्रकार की समस्या या प्रश्न उपस्थित होता है तो उस प्रश्न पर सभी पक्षों की ओर से विचार प्रारंभ किया जाता है तथा इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप उस प्रश्न पर कुछ निश्चित दृष्टिकोण या धारणाएं बन जाती हैं, जो थोड़े समय के बाद विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों में किसी एक पक्ष को समाज के बहुत बड़े भाग विशेष रूप से विवेकशील व्यक्तियों द्वारा अपना लिया जाता है और यही पक्ष लोकमत के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे आज सारी दुनिया लगभग कोरोना वायरस से पीड़ित है, उससे निदान पाने के लिए वर्तमान सरकार कोरोना पर विपक्षी दलों के साथ साथ प्रत्येक समूह से जो से उसके उसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं, उससे निमटने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, खेल क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, ऐसे विवेकशील व्यक्तियों से ऐसा जनमत तैयार किया जा रहा है ताकि हम इस महामारी से निजात पा सके। और यही पक्ष लोकमत के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लोकमत के निर्माण में उसकी अभिव्यक्ति अनेक तत्व सहायक रूप में कार्य करते हैं, जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं। सबसे पहले हम मानव तत्व पर आते हैं। लोकमत के निर्माण में सबसे अधिक प्रमुख रूप में एक राज्य के द्वारा व्यक्तियों द्वारा ही भाग लिया जाता है, लेकिन इस कार्य में सभी व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से भाग नहीं लिया जाता, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की विवेकशीलता में अंतर होता है। साधारणतः इस दृष्टि में सभी व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी में वो लोग आते हैं विधायक, समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता तथा राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण सदस्य आते हैं, जो अपना लगभग संपूर्ण समय शक्ति सार्वजनिक अक्षेत्र में ही व्यतीत करते हैं। और दूसरी श्रेणी में भौतिक वर्ग के व्यक्ति आते हैं, जो अपना साधारण कार्य व्यापार करते हुए सार्वजनिक मामलों को समझने और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करने की अक्षमता रखते हैं। तीसरी श्रेणी में व्यक्ति आते हैं जो उपयुक्त दोनों वर्गों के विचारों से प्रभावित होकर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकमत के निर्माण में मानवता सबसे अधिक प्रभावशाली क्रियाशील होता है। फिर अगला आता है समाचार पत्र और प्रेस। समाचार वर्तमान में समाचार पत्र और पत्रिकाएं लोकमत का निर्माण करती है। लिपमैन ने तो समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। समाचार पत्र खराब सरकार की आलोचना करते हैं, निर्भीकता पूर्वक लोकमत का निर्माण करते हैं। लोकमत को ध्यान में रखकर ही सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है। समाचार पत्र पत्रिकाएं के बाद हम रेडियो और टेलीविजन, ये भी अब मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं रह गई हैं, ये जनता को शिक्षा देकर लोकमत का निर्माण करने में सहायक होता है। आज की जो महामारी है कोरोना वायरस है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, उससे केवल उसकी जो पूरे वर्ल्ड की जो संसार में जहां महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पूरा संसार जूझ रहा है, कहां कैसी स्थिति है, ये सब हम इन्हीं के माध्यम से इनका लाभ उठा पाते हैं। इन्हीं के माध्यम से देखते हैं कि कहां कितना कैसा स्थिति हो रही है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं लाभ केवल शिक्षित व्यक्ति ही नहीं उठा पाते, किंतु रेडियो टेलीविजन के द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही को ही इसका लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद हम सिनेमा भी लोकमत का निर्माण और उसकी व्यक्ति का एक अभिव्यक्ति का साधन है। वर्तमान समय में सिनेमा ने भी लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिनेमा का जनसाधारण के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और दर्शकों की भावनाएं उद्वेलित हो जाती है। सिनेमा शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही को प्रभावित करता है। भारत में सिनेमा ने विधवा पुनर्विवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता, शिक्षा के पक्ष, दहेज प्रथा, जातिवाद आदि के विपक्ष में स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद हम शिक्षा संस्थाएं जो हैं, स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों में नागरिक चेतना उत्पन्न करते हैं। व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि विषयों का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन कराया जाता है। इन संस्थाओं में के द्वारा विद्यार्थियों को विवेक से कार्य करने और निर्णय लेने में सहायता मिलती है। शिक्षित व्यक्ति लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल जो है वो लोकमत के निर्माण में विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वे संगठन का निर्माण करते हैं और जनता को अपनी विचारधारा और लक्ष्यों से परिचित कराते हैं। जनता को अपनी विचारधारा और लक्ष्यों से वो परिचित कराते हैं और अपने पक्ष में अधिक अधिक लोकमत जुटाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, ये भी लोकमत के निर्माण का प्रमुख साधन है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं भी लोगों में किसी विचारधारा विशेष का प्रचार प्रसार करने के लिए लोकमत का निर्माण करती हैं। उसके बाद सार्वजनिक सभाएं भी लोकमत के निर्माण का बहुत बड़ा साधन है। मंत्री जनता में सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं, विरोधी दल जनता को सरकार की त्रुटि बताते हैं, इससे लोगों के वही विचार बन जाते हैं जो सार्वजनिक सभाओं में नेताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद आता है चुनाव। लोकमत प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन चुनाव भी है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपनी विचारधारा तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखते हैं। इसके बाद हम स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, किनका हमें सामना करना पड़ता है। हमने अभी जो लोकमत के निर्माण के साधनों पर प्रकाश डाला है, उपयुक्त साधनों के द्वारा लोकमत के निर्माण का कार्य किया जाता है, किंतु व्यवहार के अंतर्गत हमारे सामने जो लोकतंत्र प्रकट होता है वह सदैव सही नहीं होता। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में अनेक बाधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख है निर्धनता, भीषण आर्थिक असमानताएं। जब समाज के कुछ व्यक्ति बहुत अधिक निर्धन होते हैं तो इनका सारा समय अपनी शक्ति, समय और शक्ति दोनों ही दैनिक जीवन के आवश्यकताओं के साधन में जुटाने में चला जाता है। वे सार्वजनिक हितों के बारे में सोच नहीं सकते, सार्वजनिक हित की बातों के संबंध में विचार नहीं कर पाते। इस प्रकार समाज के अंतर्गत भीषण आर्थिक असमानताएं विद्वान होती है, तो असमानताओं के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। धनी और निर्धन वर्ग एक दूसरे को अपना निश्चित शत्रु मान लेते हैं, अतः विविध वर्ग अपने अपने हितों की दृष्टि के बारे में सोचते हैं। आर्थिक विषमता समाज को संपन्न और निर्धन दो वर्गों में बांट देती है। इस प्रकार संपूर्ण समाज के हित अनुकूल स्वस्थ लोकमत का निर्माण संभव नहीं हो पाता। और दूसरी बाधा जो है वो है निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली। स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति समाचार पत्र पढ़े, विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त करे, विचारों का आदान प्रदान करे, लेकिन ये सभी कार्य पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा, विवेक के द्वारा ही ठीक प्रकार से किए जाते हैं। इसलिए निरक्षरता लोकमत के निर्माण की बहुत बड़ी बाधा है। और दूषित शिक्षा प्रणाली भी लोकमत के मार्ग को उतनी ही बाधा पहुंचाती है जितनी की निरक्षरता। उसके बाद आती है सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावना निश्चित रूप से लोकमत के लिए अभिशाप है। सांप्रदायिकता संकीर्ण भावना से प्रेरित होकर सांप्रदायिक लोग वर्गीय हितों पर अधिक ध्यान देते हैं, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। ये भी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है। दोषपूर्ण राजनीतिक दल भी लोकमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि राजनीतिक दल सुनिश्चित राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर आधारित हो तो वो लोकमत के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं, किंतु यदि इनका निर्माण जाति, धन, भाषा, वर्ग के आधार पर होता है तो वे संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, देश की एकता को हानि पहुंचाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, दूषित प्रचार करते हैं। फिर अगला आता है सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना का अभाव। स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु आवश्यक है कि जनता सार्वजनिक जीवन में रुचि ले, जनता द्वारा सार्वजनिक जीवन को अपना पारिवारिक जीवन के समान ही समझा जाए। लेकिन जब जनता सार्वजनिक जीवन में कोई रुचि नहीं लेती तो को निरूप हो हमें कहानी का दृष्टिकोण अपना लेती है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझती, तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकमत के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती। अब हम स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आते हैं सुशिक्षित और समझदार जनता। स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनका अपना कोई सुनिश्चित मत नहीं होता, अपितु वे दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं। सोलटाउन ने ठीक ही कहा है, लोकमत प्रभुता की मात्रा, जनता की शिक्षा बुद्धि के सामान्य स्तर पर निर्भर करती है। सांप्रदायिकता का अंत। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का अंत होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सांप्रदायिकता जो बहुत बड़ी बाधा बनाया हुआ है, इसके द्वारा मानव का दृष्टिकोण व्यापक न होकर बहुत संकुचित हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं स्वतंत्र प्रेस पर। प्रेस की स्वतंत्र और निष्पक्षता स्वस्थ लोकमत के लिए बहुत आवश्यक है। समाचार पत्रों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक प्रश्नों पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। वेंडल बिल्की ने ठीक ही लिखा है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकमत का जीवन ही है। उसके बाद राष्ट्रीय आदर्शों के संबंध में एकता, मानव एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए प्रशासन से संबंधित दैनिक समस्याओं के संबंध में मतभेद होना नितांत स्वाभाविक है, लेकिन जनता में आधारभूत राष्ट्रीय आदर्शों के संबंध में आवश्यक रूप से एकता होनी चाहिए। राज्य के शासन का रूप, उद्देश्य आदि स्थायी प्रकृति की बातों के संबंध में मतभेद होने पर स्वस्थ लोकमत का विकास संभव नहीं होगा। विचार और अभिव्यक्ति और संगठन आदि की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। विचारों का आदान प्रदान ही लोकमत का निर्माण की एकमात्र प्रक्रिया है। अतः नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने और विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति के संबंध में वाल्टेयर की पंक्ति हमारा मार्गदर्शक होनी चाहिए कि मैं चाहे आपके विचारों से सहमत न हूं, लेकिन आपके विचार स्वतंत्रता के लिए, अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। नागरिकों को अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए संगठन आदि के निर्माण सम्मेलन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों का यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि किसी भी प्रकार से इनका दुरुपयोग न करें। समाज हो या राज्य के हितों या व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए विचार और अभिव्यक्ति की के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। उसके बाद आता है शांतिमय वातावरण। स्वस्थ जनमत के निर्माण हेतु गंभीर विचार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का गंभीर विचार तभी संभव है जब आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से शांति का वातावरण हो। युद्ध अथवा उत्तेजना के वातावरण में स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव नहीं है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, न्यायप्रिय बहुमत होना चाहिए, सहनशील अल्पमत होना चाहिए। बहुमत वर्ग में न्यायप्रियता की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यक सार्वजनिक अक्षेत्र के प्रति उदासीनता या असंवैधानिक मार्ग को न अपना ले। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग में बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। स्वार्थी बहुमत विद्रोही अल्पमत लोकमत के स्वरूप को भ्रष्ट कर देते हैं। अतः लोकमत के निर्माण के हेतु बहुमत को न्यायप्रिय होना चाहिए और अल्पमत को सहनशील होना चाहिए। दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू।